अल्लाह ने हज़रत ज़ैनब से नबी सल्लम का निकाह खुद करवा दिया आसमानों पे। ये इनकी खूबी है, यानी ये निकाह ज़मीन पे नहीं हुआ, आसमान पे हुआ, तो ये कानून तोड़ दिया। आपके मेरे लिए इसमें क्या है? रस्मों को तोड़ना। माशरे में जो रस्में होती हैं ना, वो जड़ें पकड़ चुकी होती हैं, उसको उधर से हटाना ऐसे ही जैसे एक पुराने दरख्त को निकालना। कितने डॉलर लग जाते हैं एक दरख्त को गिरवाते हुए। बिल्कुल रस्मों को लोग छोड़ना नहीं चाहते, इवन पूरा कुरान भी पढ़ लेते हैं, नमाजें 5 की बजाय 7 होने लग जाती हैं, लेकिन रस्में नहीं तोड़ते। तो बहरहाल इधर अल्लाह ने फिर ये काम नबी से लिया। उसके बाद आगे आयत नंबर 40 में खातमुन नबीयीन, नबी सल्लम के आखिरी नबी होने की दलील। मा काना मोहम्मद नबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। आप देखिए, इतनी खुली तारीफ, इतना वाज़ेह करके आपका आखिरी नबी होना इस आयत में साबित है कि अगर पुराने अकायद दिल में ना हो ना, अब आप परस्ती या बचपन से जो सुना है वो दहन से निकाल दें, तो इस पे किसी को एक लफ्ज़ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अफसोस है कि आज कुछ लोगों ने इस मसले को मुख्तलफी बनाकर नबूवत का दरवाज़ा भी खोला, और कितना कुछ हुआ ये मेरे आपसे छुपी हुई बात नहीं है। हमारा ईमान है कि हमारे नबी सल्लम आखिरी नबी थे। एक होता है सील और एक होती है स्टैम्प। यहाँ खातिम, खतमा, अंगूठी के अंदर भी जो एक स्टैम्प लगती थी उसकी तरफ इशारा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये सील नहीं है, ये स्टैम्प है। हालांकि आपका मेरा ईमान क्या है कि ये सील है, स्टैम्प नहीं। पहले दौर में लोग एनवेलप लेके उसमें खत डाल देते थे तो फिर उसको सील कर देते थे। अब उसके अंदर से कुछ निकलेगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं जब तक कि उसको ना मिल जाए जिसके पास जाना है। इसके बरक्स बाहर मोहर लगाई जाती थी, स्टिकर्स लगाए जाते थे, वो स्टैम्प्स हैं। तो अपना अकीदा हमें इंशाल्लाह दुरुस्त करना है। फिर आगे आयत नंबर 41 से 44 में अल्लाह ताला का खूब कसरत से जिक्र करो, इसकी तरफ इशारा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करना और सुबह शाम करना। और वही है जो हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। आप देखिए कि अगर एक एक करके देखें तो इसमें सबसे पहले उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जिक्र की बात हुई है। जिक्र क्या है? ये अल्लाह की याद है। दिल में अल्लाह से मोहब्बत होती है, उसका जिक्र जब जुबान पे आता है तो दिल भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। क्या पता चला कि अल्लाह का जिक्र आसान और अजरे अजीम पाने वाला अमल है। कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस बैठे हुए और जुबान हिला रहे हैं, कभी तो जुबान भी नहीं हिलती और दिल अल्लाह की मोहब्बत में जो डूबा होता है वो भी जिक्र होता है। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला का जिक्र तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। पूरी नमाज जिक्र है। आप देखते हैं कि शुरू से आखिर तक नमाज में क्या है, अज़कार है। फिर पूरे दिन के अज़कार देखिए, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, सोने के अज़कार, जागने के अज़कार हैं। तो इसमें अपने दिल को रखिए। बड़ी खूबसूरत सी एक रिवायत है इब्ने माजा में 3809 नंबर पे, नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह की अजमत का जो जिक्र करते हो, यानी तस्बीह, सुबहान अल्लाह कहना, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अल्फाज कहते हो ना, वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, यानी घूमते हैं। इनकी ऐसी भिनभिनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट। वो अपने कहने वाले का अल्लाह के दरबार में जिक्र करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के दरबार में तुम्हारा जिक्र होता रहे? हम में से हर एक चाहता है। और अल्लाह ताला की वो बात तो हम पीछे दूसरे पारे में पढ़ी चुके कि फ़ज़कुरूनी अज़कुर को, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। लव एट बोथ साइड। और दुनिया में भी ऐसे होता है, दिल को दिल से राह होती है। आप जिससे मोहब्बत कर रहे होते हैं अमूमन वो भी आपसे मोहब्बत कर रहा होता है। तो लिहाजा अपनी ज़ुबान को खाली नहीं रखना चाहिए। ज़ुबान पर हल्के मगर मीज़ान में भारी कलेमात। अल्लाह के नबी की एक रिवायत सही बुखारी में 6406 से हमें मिलते हैं। और वो क्या हैं? बहुत ही रिधम है इस हदीस में। आप देखेंगे, कलीमतानी खफीफतानी अलल्लिसान। अगर मिसरे बनाए ना, तो पहला मिसरा, दो कलमे जो ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, सकीलतानी फिल मीज़ान, आमाल नामे में यानी तराजू में वो बहुत भारी होंगे, हबीबतानी इलर रहमान, रहमान को बहुत अजीज़ हैं, और वो कलमात कौन से हैं जो आप और मैं अदा करेंगे? सुबहान अल्लाह अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। कितना को टाइम लगा, लेकिन आपके मेरे तराजू में भारी करेगा। आपको था कि एक नेकी की कमी हमें क़यामत के दिन परेशान कर देगी, और कहाँ फिर ये सब कुछ। तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान इसको देखे। फिर उसके बाद नबी सल्लम की खसूसी शान का जिक्र है आयत 45 से 48 में, और आप देख रहे हैं कि सूरह अल-अहज़ाब पूरी की पूरी नबी के बारे में है, और आगे बल्कि जो वाक़यात आएंगे जंगों के भी दूसरे, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि हम सीरत का कोई बाप पढ़ रहे हैं। या यूहन नबी, ए नबी, बेशक हमने आपको भेज दिया। क्या क्या बना के आप उंगलियों पे नोट कीजिएगा। हमारे प्यारे नबी के मुख्तलिफ मुकाम क्या थे, आपकी शान क्या थी। शाहिदम, मुबशिरन, नज़ीरन, दायन इलल्लाह बिइज़्निही, वसिराजम मुनीरा। ये पांच शानें हमारे प्यारे नबी की। शाहिद क्या थे? सारी जिंदगी शहादत हक की गवाहियां देते रहे। कैसे अल्लाह ताला ने बिलमुशाफे नबी सल्लम से अपना काम लिया। सहाबा किराम अपनी सर की आंखों से नबी को देखा करते थे। अल्लाह करे क़यामत के दिन हमें नबी का साथ मिले, हम हौज़े कौसर से उनके हाथ से पानी पिए, और जन्नतों में भी अल्लाह ताला हमें अपने नबी का दीदार करवाए। फिर मुबशिरन थे, किसके लिए? गलत काम करने वालों को, करते रहो कोई बात नहीं, मैं बिशारत दे रहा हूँ। जो चोरी चिकारी झूठ फरेब रिश्वत खोरी करनी है कर लो, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ जन्नत की। दिल में आती है ये बात? नेवर। अच्छे काम करने वालों को, आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों को खुशखबरियाँ देते थे। फिर नज़ीरन, वार्नर, डराने वाले, ये किसको? अभी ऑपोजिट पे ले लीजिए कि अच्छे काम करने वालों को डरा रहे थे कि तुम्हारी नीयतें नहीं ठीक, तुम तो अंदर से पता नहीं किया। नहीं, गलत काम करने वालों को। फिर दायन इलल्लाह बिइज़्निही, दाई इलल्लाह, अल्लाह मुझे आपको बना दे, और क़यामत तक यानी मरते दम तक अल्लाह हमें इस दावत के काम पे रखे। तो क्या थे? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। फिर सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग, सूरज। सारी जिंदगी नबी ने अपनी जिंदगी दावत इल्लाह पे लगा दी, और हिदायत का सूरज बनकर दुनिया में चमके। लिहाजा आज जो लोग अल्लाह के नबी की इन बातों पे ये ईमान भी लाते हैं और आपके नक्शे कदम पे चलते हैं, वबशिरिल मोमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, आप मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और साथ ही कह दिए, वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, कुफार और मुनाफिकीन की इतात मत कीजिए, उनकी बातें ना मानिए। वदअ अज़ाहुम व तवक्कल अलल्लाह, तंग करते थे, तकलीफ़ें देते थे, नबी के ऊपर बातें डालते थे, कहा छोड़ दीजिए उनको, आप इनकी बातों पे, इनकी तकलीफ़ों पे सब्र कर लें, तवक्कुल कर लें अल्लाह पे, और अल्लाह आपके लिए काफ़ी होगा। फिर इसके बाद आयत नंबर 49 से 52 में निकाह तलाक के कुछ अहकाम हैं, जिसमें बुनियाद वही निकाह ही बन रहा है जिसका तस्करा पीछे हुआ। लेकिन कुरान पाक में इतनी तफसील से ना नमाज का तरीका है, ना वुजू का तरीका है, ना आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हज की डिटेल्स हैं, लेकिन ये इंसानी मामलात की क्यों इतनी बात है? किससे निकाह करना है, कैसे करना है, नहीं करना, एहतियात क्या है। फिर ख़ास तौर पर या नबी सल्लम के लिए कुछ रुख्सतें थी, उनका तذکرہ करके असल जो बात आपको मुझे दी जा रही है वो क्या है कि निकाह और तलाक की अहमियत समझो, इनको खेल ना बनाओ, मजाक ना समझो। आज देखिए कि निकाह के वक्त पे तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ होते कि हम कोई मजहबी काम कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ शादी या निकाह एक रिलीजियस सेरेमनी है या एक दुनियादारी है? और खुदा ना खासा तलाक का मौका आ जाए तो वो किससे सीखी है? फिल्मों से सीखी है। खान घरज के साथ बारिश हो रही है और तलाक है और तलाक है, और हीरोइन जो है वो तड़प रही है। हालांकि आप देखिए कि निकाह और तलाक मजहबी एक्ट्स हैं, कुरान में इनके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके, और यहाँ आगे तो पूरी एक सूरत आएगी सूरत तलाक के नाम पे। फिर उसके बाद सूरत अलहज़ाब के जो अहकाम हैं ना, ये फ़र्ज़ का दर्जा रखते हैं, इनको समझना और इन पे अमल करना लाजमी है। बिल्कुल जैसे सूरत नूर के शुरू में बात थी कि फ़र्ज नहा, तो आपके मेरे पास चॉइस नहीं है। ग़ुलाम और मुलाजिम का काम सिर्फ उबे करना होता है, बात मानना होता है, एतराजात नहीं करना होता। इसलिए अब आगे ज़रा से अहकामात में मज़ीद ख़वातीन की तरफ जाती है बात। 53 से 54 में पर्दे का हुक्म है। हज़रत ज़ैनब से निकाह का मौका था, आपने दावत वलीमा की। कुछ लोग खाना खाने के बाद बैठे रहे बातें कर रहे हैं। अब अल्लाह के नबी को उनके बैठने से तकलीफ होती क्योंकि आप सुबह जल्दी उठने के आदी थे, और आज भी ये चीज़ आपने अमल में रख लीजिए इन आयतों के साथ कि लेट नाइट डिनर, लेट नाइट पार्टीज, दावतें, वलीमे, बारात, इसको कंडेम कीजिए। क्योंकि जो देर तक जागेगा वो देर से जागेगा। फजर रिस्क पे चली जाती है जब रात 12-1 बजे हमारे शादियों के फंक्शंस ख़त्म हो और इसी तरह से बाकी बातें। तो लिहाजा इन आयात में एक तो ये कह दिया गया कि जब किसी के घर जाते हो तो खाना खा कर फौरन निकल जाओ, घर वाले को सताओ नहीं, घर वाले थके भी होते हैं और कुछ भी है। और दूसरा, उसी मौके पे आयतें उतर गई थी, वह इजा साल तुमु हुन्ना मतान फसलु हुन्ना मिम वराई हिजाब। जब कभी तुम इनसे कोई चीज मांगना चाहो तो हिजाब यानी पर्दे के पीछे से मांगो। इसके बारे में हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत मिलती है, जो 10 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो इनकी वालिदा उम्मे सुलैम 10 साल बच्चे को लेकर आईं कि अल्लाह के नबी मेरे इस बच्चे को कबूल करें। एक तो मैं चाहती हूँ ये आपकी खिदमत करें और आपकी दुआएं लें, और दूसरी बात है कि आपके जेरे साया तरबियत पाए। तो लिहाजा ये अल्लाह के नबी के घर में थे, और ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के घर में एक बच्चा बनकर जब आया था तो मैं ज़रूरतन आपकी बीवियों के हुजरों में आता जाता था। ये जो मौका है जिस पे आयत उतरी तो एकदम मुझे रोक लिया गया कि अब आप इस तरह से नहीं जा सकते। तो क्या पता चला कि घरों के अंदर औरतों और मर्दों का इख्तलात भी पसंदीदा नहीं है। कहाँ फिर बाहर मिक्स गैदरिंग और खुशबुओं और जेवरात में लदे फदी औरतें और लोग हों, तो इससे बचना है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, तुम्हारे भी दिल पाक रहेंगे और औरतों के भी दिल पाक रहेंगे। तो लिहाजा पर्दा कोई नई चीज़ नहीं है जिस पे मैं आपको कुछ बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हीं लफ्ज़ों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, चंद बातें समझ लेते हैं। मैं पर्दा क्यों करूँ? तो पहली बात तो लिख लें कि पर्दा औरत के लिए हिफाजत का जरिया है। मैं इसको दो लफ्ज़ों के साथ आपके सामने रखूंगी तो आप समझ जाएंगे। आप देखिए कि पुलिस की गाड़ी दिखे या उसका सायरन हो, इसको सुनकर दिल में क्या आता है? एक औरत है जो अकेली थी, घबरा रही थी, उसको पीछे से लग रहा है कि कोई मेरे आ रहा है और मेरा पर्स ना छीन ले, वो पुलिस की गाड़ी को देखकर क्या सोचेगी? अल्हम्दुलिल्लाह कोई इधर है जो मेरी हिफाजत कर सकता है, और मैं इसको बताती हूँ या कम से कम मैं अब सिक्योर हूँ। इसके बरक्स अगर एक दूसरी औरत है जो किसी के घर से कोई जेवर चोरी करके निकली है, उसको भी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है, तो वो उसको सुनकर क्या सोचेगी? कि ये मेरे लिए कैद है। बस जिन औरतों ने कोई क्राइम किया होता है ना, उनको पर्दा एक जुर्म लगता है या उनको एक थ्रेट लगता है, कैद लगती है। लेकिन जो औरतें खुद को कीमती समझती हैं वो कहती हैं बिकॉज आई एम प्रीशियस, मैं चूंकि कीमती हूँ। और कीमती चीज़ें कहाँ होती हैं आपकी? जेवरात अमूमन कहाँ रखते हैं हम? पैसे रुपए कहाँ रखते हैं हम? तो फिर औरतों को क्या खुला छोड़ देंगे? पहली बात तो समझ गए, अगली पे चलते हैं। पर्दे का एक मकसद क्या है? कि मुसलमान औरत पहचानी जाए कि ये मुसलमान औरत है, और नतीजे में अजियत पहुंचाने वालों से बच जाए। आप देखिए कि मर्द को जो हमारे यहाँ एक जुमला बोलते हैं कि ग्रीन सिग्नल औरत देती है, फिर कई सरफिरे होते हैं, वो कई जगह ऐसे भी हैं कि वो रेड लाइट पे भी ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं। तो हर माशरे में कुछ ना कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं अमूमियत पे, शरीफ शरूफा, आपके मेरे घरों में, हमारे फंक्शंस में, हमारी शादियों में। अमूमन देख लीजिएगा कि एक बापर्दा औरत किसी महफिल में आ जाए, मर्दों को हाथ पांव पड़ जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, अंदर नहीं आएंगे, कभी नॉक करेंगे, कभी कुछ करेंगे, दैट्स इट, गुड। एहतराम, रिस्पेक्ट होती है। जब औरतें खुद भड़बड़ के बात करती हैं ना, और फिर उसमें कई अदाएं, और वही बात है कि आवाज़ में लोच होता है, यानी कि ऐसे सूरत में भी मर्द तो बेतकल्लुफ होगा। तो लिहाजा हम ख्वातीन को वो मेन डोर बंद कर देना चाहिए जिधर से फितनों की आंधी आती है। जब कभी आंधी का मौसम बने तो अब क्या कहते हैं? खिड़कियां बंद कर दो, अब दरवाजे भी बंद कर दो, अच्छा जाओ फर्नीचर के ऊपर कपड़ा डाल दो। हमारी औरतें पर्दा नहीं करती, हमारे सोफे और बेड करते हैं, उस पे कपड़ा डाल देते हैं। आप क्यों बचा रहे हैं उनको, किससे बचा रहे हैं, मट्टी और इस तरह की गर्दो गुबार से? तो क्या मर्दों की निगाहों में एक औरत के लिए जो शहवत होगी वो कम खतरनाक होगी? तो लिहाजा वो लिस्ट बताकर जो पीछे हमने सूरत नूर में पढ़ी थी, अब यहाँ एक और लिस्ट दी जा रही है 55 में, माहरम मर्दों से पर्दा नहीं है। ला जुनाह अलैहिन्न फी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न, यानी अब ये तो नहीं कह दिया कि एक औरत घर में भी पूरे निकाब और दुपट्टे और चादर और अबाए के अंदर रहेगी। घरों का माहौल ही ऐसा होगा, घरों का सेटअप ही ऐसा होगा, खाने पीने के तरीके ऐसे होंगे कि जो गैर महरम मर्द है वो फिर ज़रा तकल्लुफ करेंगे, एहतमाम से आएंगे, खांस के आएंगे, कंगार के आएंगे, लेकिन बाप है, भाई हैं, बेटे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, औरतें हैं, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जो बिल्कुल बूढ़े खोसट हो चुके हैं, जो बचपन से आप देख रही हैं आपके घर में थे, अब वो बिल्कुल एक ऐसी एज में आ गए हैं कि उनके अंदर कोई ऐसी कशिश नहीं रह गई, ना वो ऐसी बात सोच सकते हैं। तो कहा हाँ, वत्तकीन अल्लाह, असल अहम बात पता क्या है, अल्लाह से डरती रहो और अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे गवाह है। तो लिहाजा ये पर्दे का मौजू इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिल ना चाहता हो तो बात समझ कैसे आए। इसके बाद नबी सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने की बात आयत 56 में, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी नबी सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो और खूब अच्छे तरीके से मानो। अब ये जो लफ्ज़ है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, इससे एक बात तो पता चली कि अल्लाह ताला दुरूद भेजते हैं, वो कैसे? तो इस पर एक बड़ी खूबसूरत किताब है इसी नाम पे, अल्लाह और फरिश्तों का दुरूद, डॉक्टर फजल साहब की लिखी हुई है, आप उसे फ़ायदा उठाइए तो आपको दुरूद के बहुत से मानी पता चलेंगे, जिसमें एक क्या है कि अल्लाह का नबी पर दुरूद पढ़ना क्या है? क्या हमारी तरह वो दुरूद की तस्वीर पढ़ते हैं? नहीं, बल्कि फरिश्तों में अल्लाह के नबी सल्लम की तारीफ की जाती है अल्लाह की तरफ से, और फरिश्तों का फिर दुरूद भेजना क्या आप पे, नबी सल्लम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हम आपने क्या करना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको दुरूदे इब्राहिमी कहते हैं, नमाज में भी पढ़ते हैं। क्या इसके अलावा कोई और दुरूद नहीं पढ़ सकते? बहुत से दुरूद हैं जो हम पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे, खाली इतना भी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, सुबह शाम की दुआओं में 10-10 बार ये दुरूद पढ़ने की फजीलत है। फिर इसी तरह से एक दफ़ा दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें हैं, दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात कि कुछ दुरूद ऐसे होते हैं जो कुरान और सुन्नत में नहीं है, उनकी हैसियत क्या है? और ये मौजू हमारे यहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो पहले तो मैं आपको इस पे एक बुक दुरूद शरीफ के मसाइल रिकमेंड कर देती हूँ, तफहीमुस सुन्ना सीरीज़ में शुरू ही की बुक है, छोटी सी बुक है, आप उसमें से बेहतरीन तरीके से इस मौजू को समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ाई भी है, इसकी ऑडियो भी मौजूद है। लेकिन यहाँ तीन बातें हैं, नंबर एक, दुरूद शरीफ ये वाला जो भी हम देख रहे हैं, या इसके अलावा जितने भी दुरूद नबी सल्लम से हमें मिलते हैं किताबों में, हदीस में, तो वो सब मसनून दुरूद है। ये तो ना सिर्फ ये कि पढ़ने का सवाब है, बल्कि ये ज़रूर पढ़ने चाहिए, पहली बात हो गई।